एक बड़े से मैदान पर एक बड़ा सा घना पेड़ था। ये मैदान पूरी तरह से बड़ी बड़ी लोहे की ग्रिल से बना हुआ था। इसका गेट भी गोल्डन कलर का था और गार्डन में बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे। लेकिन इस वक्त उस गार्डन में कहीं पर हलचल हो रही थी, वो उस बड़े से पेड़ के नीचे, जो उस बड़े से गार्डन में इकलौता ही था। ये पूरा गार्डन और ये पूरी जगह आस्तिक ने अभी एक घंटे पहले ही खरीदी थी। आस्तिक की सिक्योरिटी के कुछ लोग और नीरज वहीं पर खड़ा था। नीरज के हाथों में एक बॉक्स था जिसके अंदर आस्तिक और अरुणिमा के बच्चे का एम्ब्रियो था। वैसे तो बच्चे अभी विकसित भी नहीं हुए थे, पर वो खून की थैली आस्तिक के लिए बहुत मायने रखती थी। आस्तिक ने ब्लैक ट्राउजर पैंट पहन रखा था और उसके पैरों पर कोई शूज या चप्पल नहीं थी, वो खाली पैर ही था। सिंपल शर्ट पहन रखी थी, लेकिन शर्ट को उसने पैंट के अंदर टक नहीं किया था, बल्कि उसकी शर्ट बाहर की तरफ निकली हुई थी। सारे बटन बंद थे और आंखों पर नजर का चश्मा। आस्तिक का एक बॉडीगार्ड छाता लेकर खड़ा था, लेकिन आस्तिक उस खुले मैदान में धूप के नीचे अकेला ही खड़ा था। सामने एक मजदूर था जो उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा था। जैसे ही गड्ढा खोदने का काम पूरा होता है, आस्तिक आगे बढ़ता है। उसने नीरज की तरफ देखा और नीरज उस बॉक्स को आस्तिक के पास ले आता है। आस्तिक ने उस बॉक्स को अपने हाथों में लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे खोलकर एक बार देखने की। आस्तिक की आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया उसके लिए वीरान हो चुकी है। वो धीरे धीरे कदमों से चलकर उस गड्ढे के पास आता है और धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। आस्तिक के लिए ये करना उतना ही मुश्किल हो रहा था जितना कि अपने सीने से अपना कलेजा निकालना होता है। उसने कभी भी कोई बच्चा नहीं चाहा था और ना ही कभी किसी बच्चे की चाह रखी थी। उसे लगता था बच्चे सिर्फ सरदर्द होते हैं और आपका काम बढ़ाते हैं, लेकिन आज वो खुद अपने बच्चों को दफनाने आया था। ताकत और पैसे वाले आस्तिक रायचंद को एक पिता ने हरा दिया था। अपने बच्चों को लेकर इस वक्त आस्तिक हारे हुए इंसान की तरह जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी दौलत शोहरत आज किसी काम की नहीं थी। एक परम सत्य उसे आज अपनी आंखों के सामने नजर आया था कि तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे तुम बच नहीं सकते हो, और जब मृत्यु आती है तो दौलत शोहरत सब यहीं रह जाते हैं। तुम्हारे साथ सिर्फ वही जाता है जो तुम्हारे कर्म होते हैं। आस्तिक काफी देर तक उस पेड़ के नीचे अपने बच्चों को अपने हाथ में लेकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो उसके कपड़ों को भी भिगो रहे थे। काफी देर बाद नीरज आता है। ये पहली बार था जब नीरज ने आस्तिक को अपना बॉस नहीं बल्कि एक इंसान समझा। उसने धीरे से आस्तिक के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहारा देते हुए कहा, बॉस अपने आप को संभाल लीजिए, इस वक्त मैडम को भी आपकी जरूरत है। अगर आप इस तरीके से बिखर जाएंगे तो मैडम को कौन संभालेगा। आस्तिक एक गहरी सांस लेता है। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उसने खुद के जज्बातों पर काबू पाया। धीरे से उसने उस बॉक्स को गड्ढे में डाल दिया और अपने हाथों से धीरे धीरे उस पर मिट्टी डालने लगा। जब पूरा गड्ढा मिट्टी से भर जाता है, तब नीरज पास में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करता है, जो जल्दी से गुलाब का पौधा लाता है और उसे कब्र के ऊपर लगा देता है। नीरज जल्दी से पानी की बोतल लाता है और आस्तिक को देता है। आस्तिक ने पानी की बोतल खोली और उसमें से धीरे धीरे करके उस पौधों में पानी डालने लगा। उस पौधे में दो कलियां खिली हुई थी, जिसे देखकर आस्तिक का मन और ज्यादा तड़प रहा था। उसने अपनी आंखों से अपनी नजर का चश्मा निकाला और अपनी आंखों को साफ करते हुए वो उस गुलाब की दोनों कलियों को देखते हुए बोला, बच्चों मुझे नहीं पता आप दोनों कौन थे। आप दोनों लड़के थे, क्या दोनों लड़कियां थीं, या आप में से एक लड़का था एक लड़की था, मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक मुझे पता चले उससे पहले ही आप हम सबको छोड़कर चले गए। तो मैं अपने तरीके से ही अंदाजा लगाता हूं कि आप में से एक लड़का रहा होगा और एक लड़की। इसके आगे आस्तिक का गला भर गया था। वो अपने बच्चों से बात कर रहा था ऐसे जैसे वो कलियां उसके बच्चे हैं और उसकी बात सुन भी रहे हैं। लेकिन आस्तिक वहीं नहीं रुका, उसके आंसू निकल रहे थे और उसने आंसुओं के साथ ही अपने जज्बातों को रोकते हुए कहा, बच्चों आप दोनों मम्मी पापा से बहुत दूर हो, लेकिन आप दोनों एक साथ हो, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। आस्तिक से आगे बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह से भरी हुई थीं। उसका गला भारी हो गया था और दिल थक थक कर रहा था। उसके नाक से भी पानी आने लगा था। उसने अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों से उस फूल की कलियों को देखते हुए कहा, आप दोनों को ही अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब मम्मी पापा नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए। आप लोगों ने तो फिर भी अपनी मम्मी को महसूस किया होगा, लेकिन आपके पापा इस लायक भी नहीं थे कि आपको महसूस कर सकें। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूं। बच्चों क्या आप लोग अपने पापा को माफ करोगे? प्लीज बच्चों मुझे माफ कर दो। और इतने के साथ ही आस्तिक टूट जाता है। उसके मुंह से रोने की आवाज निकलने लगी थी और उसके हाथों से उसका चश्मा छूटकर जमीन पर गिर गया था। अपने बॉस को ऐसा देखकर वहां खड़ा हर शख्स हैरान भी था
और सबकी आंखों में आंसू भी थे। यहां तक कि नीरज की भी। उसने पहली बार आस्तिक को एक हारे हुए इंसान के रूप में और एक टूटे हुए पिता के रूप में देखा। नीरज जल्दी से आस्तिक के पास आता है और उनके कंधे को संभालते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आस्तिक ने नीरज को गले लग लिया और फूट फूट कर रोने लगता है। इस वक्त आस्तिक को सच में एक सहारे की जरूरत थी। नीरज ने भी इंसान को इंसान समझा और आस्तिक के दर्द को समझते हुए उसने आस्तिक को तब तक अपने गले से लगे रहने दिया जब तक कि आस्तिक शांत नहीं हो जाता है। काफी देर तक आस्तिक नीरज के गले लगाता हुआ रो रहा था और जब वो शांत हुआ तब जाकर वो नीरज से अलग होते हुए उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, थैंक्स नीरज। नीरज इन दोनों आस्तिक का बदला हुआ रूप देख रहा था। आस्तिक का प्यार से बोलना और उसका हर किसी के लिए केयर दिखाना, और आज तो उसने वो देख लिया था जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। आस्तिक को अपने घुटनों के बल बैठा हुआ रोता हुआ देखा था उसने। आस्तिक खड़ा होता है और अपने बच्चों के उस कब्र को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो रहा था। उसे अरुणिमा को भी संभालना था और अरुणिमा हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर के भरोसे थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल वापस जाना था। अरुणिमा को होश आने वाला था लेकिन उसकी मन अपने बच्चों के पास रखकर उनसे और बातें करने को कर रहा था। नीरज उस गार्डन की केयरटेकर के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या काम है? केयरटेकर जल्दी से बोला, जी सर, मुझे बता दिया गया है। यहाँ पर सफाई रखनी है और रोज पानी देना है। यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी भी तरीके का कोई नुकसान होना चाहिए। नीरज ने सर हिलाया और फिर उस गुलाब के पौधे को देखते हुए कहा, और याद रखना, ये गुलाब का पौधा कभी मुरझाना नहीं चाहिए। हमारे सर जब भी यहाँ पर आए उन्हें ये पौधा हमेशा हरा भरा ही नजर आना चाहिए। केयरटेकर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। आस्तिक ने यह सारा बाग सिर्फ अपने बच्चों की कब्र के लिए खरीदा था ताकि उसके बच्चे यहाँ सुकून से रह सके, लेकिन आस्तिक के सुकून का अब हर पल उसे बेचैनी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तड़प महसूस होती है।